शांति। तो आज के प्रश्न उत्तर का सीरीज है, प्रश्न नंबर 93 है। प्रश्न है, धर्मराज पुरी क्या है, उसका अनुभव कब और कैसे होता है। बाबा ने उसका बहुत सहज और सटीक उत्तर दिए हैं। धर्मराज पुरी सजाओं का अनुभव की जो एक अवस्था है वो है धर्मराजपुरी। जैसे अंत समय में जब हमारे जो किए हुए विकर्म, छोटे छोटे पाप कर्म या बड़े पाप कर्म जो सामने आते हैं, बाकी और कोई यमदूत नहीं आता है, छोटे छोटे पाप ही बड़े विकराल रूप में आते हैं। कई जो बड़े पाप हैं वो भूतों की तरह अनुभव होते हैं, जिनको ही यमदूत कहते हैं, बाकी कोई और यमदूत नहीं होते हैं। बाबा ने उसमें एक छोटा सा उदाहरण बताया है, जैसे कई आईने होते हैं जिसमें बहुत छोटा चीज भी बड़ा दिखाई देता है। कोई छोटा व्यक्ति भी हो तो बहुत बड़ा दिखाई देगा, मोटा दिखाई देगा, लंबा दिखाई देगा। वैसी बाबा ने कहा जो छोटे छोटे पाप है बहुत ही भयानक रूप में आते हैं। धर्मराजपुरी की जो सजाएं हैं बाबा ने कहा बहुत कड़ी है। छोटे छोटे सजाओं की जो दंड मिलती है, उस दंड और जो वो अनुभव की जो अवस्था होती है, वो अंदर ही अंदर आत्मा को जलन होती है, कष्ट फील होता है, पश्चाताप की त्राही त्राही होती है। वो जो समय होता है वो पश्चाताप और वैराग्य का समय होता है। पर बाबा ने कहा कि ये सिर्फ अंतिम समय में होता है, अगर इसको हम पहले भी चाहें तो पूरा कर सकते हैं, यही धर्मराजपुरी है। इसमें तीन बातें मुख्य हैं, एक तो सजाएं, दूसरा है पश्चाताप और तीसरा है वैराग्य। इन तीन बातों पर ही हमारे जीवन का जो अंतिम मोमेंट का जो खेल होता है वो चलता है। पहली बात तो है कि जो सजाएं हमें मिलनी है उसका आधार हमारे कर्म है। तो सजाओं से बचने के लिए पहले हमें कर्म पे परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कर्म हैं या कौन कौन से ऐसे कहना चाहिए कि जो करते आए हैं हम विकर्म या पाप है ना, कुछ कुकर्म जो हुए हैं उनका मेन बीज क्या है। पहले उन बीज को जब खत्म कर देंगे तो झाड़ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। तो पाप कर्मों का बीज, पहला पाप कर्मों की बीज की शुरुआत होती ही है देह से, देह भान। देह भान में जब आ जाती है आत्मा कोई भी तो वहां से विकर्म की प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहला पाप ही है अपने को आत्मा के बजाय देह समझना। तो इन सजाओं से मुक्ति के लिए सबसे पहली बात है कि ये जो बीज है, जो सीड है विषय विकारों की, जो आत्मा के ऊपर जो कट चढ़ती है उसकी, वो है आत्मा। और आत्मा के आत्म अभिमान स्थिति में या अपने को निराकारी रूप में सदा स्थित रखने के लिए सदा उसमें चार बातें चाहिए आत्म अभिमानी रहने के लिए अथवा देह भान को खत्म करने के लिए। पहला है स्वदर्शन, स्व पर नहीं, स्व स्व माना अपने आप को देखना, स्वदर्शन। तो बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति बताई है कि बच्चे तुम स्वदर्शन चक्र, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, इससे ही माया का गला कट जाएगा। अर्थात जो विकर्म कराने वाली जो माया है, जो रावण है, उसका गला कट जाएगा। इसलिए शास्त्रों में भी जो रावण का जो बीज दिखाते हैं वो क्या है, रावण के एक सिर को काटे तो फिर दूसरा आ जाए, फिर आकर के वो जुट जाता था। क्यों? क्योंकि उस विकारों की जो, क्योंकि रावण जो है वो 10 विकारों का प्रतीक है, 5 विकार पुरुष के, 5 विकार स्त्री के कहते हैं। तो इन विकारों का प्रतीक जो सिर है, रावण का 10 सिर दिखाते हैं। लेकिन एक सिर काटते हैं फिर दूसरा जुड़ जाता है, दूसरा काटते हैं तीसरा फिर हो जाता है, लेकिन वो पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। तो बाद में दिखाते हैं कि विभीषण ने बताया कि नहीं, इसका जो बीज है इसके नाभि में है, उसको अमृत कुंड कहा उन्होंने। पर अमृत कुंड नहीं, लेकिन वो विकारों का कुंड था, विष कुंड। अमृत कुंड नहीं लेकिन विष कुंड था वो। और उस विष कुंड को खत्म करने के लिए उन्होंने कहा तीर वहां मारो। जब राम ने तीर उसकी उनकी नाभि पे मारा, विष कुंड पे मारा, तो रावण बेहोश होकर के गिर गया और खत्म हो गया। तो वैसी मानव जीवन का जो मुख्य आधार है वो है आत्म अभिमानी स्थिति, आत्मा का भान, देह के बजाय आत्मा का अनुभव करना। तो पहला है स्वदर्शन, दूसरा है स्वचिंतन। स्वचिंतन अर्थात आत्मा की जो ओरिजिनल क्वालिटीज हैं, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, जो आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी है उसके साथ में और भी सारी जो विशेषताएं हैं, जो धारणाएं हैं, उन विशेषताओं और धारणाओं का चिंतन करना, यह है स्वचिंतन। अर्थात उसको अपने जीवन में इमर्ज करना, लाना। तो बाकी जो विकर्म कराने वाली धारणाएं हैं, जो संस्कार है, जो अज्ञान है, वो खत्म हो जाएगी। तीसरा स्वनिरीक्षण, अपने आप का निरीक्षण करना व अवलोकन करना, जिसको बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं चेकिंग, जब तक अपनी चेकिंग नहीं करते रहेंगे कि मैं देह के भान में हूं, देह के अनुभव में हूं या आत्मा के अनुभव में हूं। अगर देह का अनुभव हुआ तो वहां से गड़बड़ धीरे धीरे शुरू हो जाएगी, आत्मा के अनुभव में रहेंगे तो वो वहां से अपनी जो कहना चाहिए कि जीवन की जो पटरी है या अथवा कहें जो श्रेष्ठ अनुभवों की जो रास्ता है उस पर चलते रहेंगे। उसके लिए अपनी चेकिंग बहुत जरूरी है। चौथा, स्वधर्म और स्वधाम, और स्वधाम में रहने वाले अपने स्व के पिता की याद। स्वधर्म है ही शांति, और स्वयं का जो स्वधाम भी है, जो स्वयं का जो निवास स्थान है वो शांति धाम है। तो स्वधर्म में रहेंगे, जब शांति में रहेंगे तो कोई भी कार्य जो करेंगे उसमें कोई भी गड़बड़ होने का मार्जिन नहीं है। इसलिए कहते कभी भी यथार्थ निर्णय करना हो तो क्या करें, राइट है या रॉन्ग है उसका निर्णय करने के लिए पहले बोलते हैं रुको। जैसे ताराजू को भी दिखाते हैं निर्णय शक्ति में, भाई अच्छा और बुरा की परख करना है, अच्छा कर्म और बुरा कर्म अगर होगा हमसे, पाप कर्म होगा तो अगर बुरा निर्णय कर दें, गलत निर्णय हो जाएगा तो पाप कर्म होगा, तो दिखा दे क्या है उसकी जो कांटा होती है वो एकदम स्थिर होती है तराजू की, तब पता चलता है कि उसकी जो तुलना है उसका जो तौल है वो ठीक है वह नहीं है। तो ऐसे हम जब शांति के स्वधर्म में रहते हैं तो हमारी जो बुद्धि रूपी जो निर्णय शक्ति है वो अच्छा काम करती है, श्रेष्ठ की तरफ पॉजिटिव निर्णय देती है, तो फिर हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं। और स्वधाम की यात्रा अर्थात स्वधाम में रहना और स्वधाम में रहने वाले उस सुप्रीम फादर उनकी याद में रहना बहुत जरूरी है, तभी देह भान को खत्म कर सकते हैं, नहीं तो देह भान का खत्म करना कोई मासी का घर नहीं है। पांचवा एक उसमें और भी है जो है स्वमान, अपने स्वमान में स्थित रहना है अर्थात रूहानी शान में, रूहानी अभिमान में, जिसको बाबा कहते हैं ईश्वरीय नशा। जितना हम ईश्वरीय नशे में रहेंगे उतना देह भान की फीलिंग से परे रहेंगे। इसलिए कहते हैं जितना इस रूहानी नशे से चूर उतना इस पुरानी दुनिया देह और देह की दुनिया से दूर परे रहेंगे। इसके बाद जो दूसरा है देह का अभिमान, जिसका बीज है मेरा, देह का भान, पहला था देह का भान, अब ये है देह का अभिमान जिसका बीज है मेरा। मेरा इसमें बहुत सारे आते हैं, नाम रूप देश काल गुण कर्तव्य, इसमें अभिमान आता है, इससे भी परे रहना है, यहां भी पाप होता है, विकर्म होते हैं। इस पे एक छोटा सा कहानी है। एक किसान था, बहुत ही गरीब था, लेकिन उसने अपने अथक परिश्रम से मेहनत से एक सुंदर बगीचे का निर्माण किया, बहुत अच्छे अच्छे फूल लगाए, बहुत खुशबूदार भी थे, बहुत अच्छे अच्छे फल वाले पौधे लगाए, बगीचा बहुत सुंदर तैयार कर लिया उन्होंने बहुत ही थोड़े समय में अपने अथक परिश्रम और मेहनत के द्वारा। परंतु एक दिन वो कहीं कारोबार के हिसाब से कहीं चला जाता है अपने, और एक गाय आती है और उसके बगीचे में घुस जाती है, कुछ खा जाती है, कुछ इधर उधर तहस नहस कर देती है, इधर उधर कर देती है, ऐसे करते रहती है। तब तक वो जो किसान होता है, जो बागवान होता है अथवा जो माली होता है वो आ जाता है और देखता है ये गाय, मैंने इतना मेहनत करके बगीचा इतना सुंदर बनाया था। उसको बहुत गुस्सा आता है, क्रोध आता है और एक डंडा लेकर के उसकी खूब पिटाई करता है। पिटाई ऐसा कर देता है कि अंततः गाय की मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो जाती है तो वो सोचता है ठीक है सब कुछ तो भगवान कराता है ना, क्योंकि सबके अंदर भगवान है तो भगवान कराता है, सुख भी भगवान देता है, दुख भी भगवान देता है। तो वो कहता है कि भगवान ने मार दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब भगवान को ये बात अब पता तो चलती है, वो जानी जाना नहार है। अब वो कहता है भगवान ने दुख दिया था, अब जब गाय की जब आत्मा ने शरीर छोड़ दी तो बाद में वो पहुंचे ऊपर भाई ऐसे, वो कहता है नहीं भगवान ने मारा। अब बात बहुत मुश्किल हो गई। फिर भगवान ने वहां से एक फरिश्ते को इनके पास भेजा, किसान के पास है ना, नहीं हाँ किसान जो माली था, माली बन गया था, उनके पास भेजा। अब फरिश्ता आता है वहां से भगवान का संदेश लेकर के, तो वो पहले पूछता है क्या ये बगीचा किसने बनाया था, मैंने बनाया था वहां पर, वहां पे भगवान ने नहीं, वहां पे मैं बनाया था, मेरा बना गया। ये फूल किसने लगाए थे, कहा ना मैंने लगाया है। फिर इतना फल फूल वाले पौधे किसने लगाया, तो दूसरी बार भी कहता कहा ना मैंने लगाया है, सारी मेहनत मेरी है। तो फिर इस गाय को किसने मारा, भगवान ने मारा है ना। जब ये कार्य आपने किया, बगीचे आपने तैयार किए, फूल आपने लगाए, पौधा आपने लगाए है ना, सब कुछ आपने किया, तो ये गाय को भी मारा है आपने, भगवान ने नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि वो मेरा इसको कहा, उसको मेरा नहीं कहा, वो जो मर गई गाय वो भगवान ने मारा। वैसे ही कहते हैं कि जो कर्म हम करते हैं उसका फल मिलेगा ही, लेकिन मेरा पन आ गया। अगर यहां पर भी कहता कि बगीचा भगवान ने लगाया तो कोई बात नहीं, गाय ने खा लिया, भगवान की गाय थी वो खा ली है ना, लेकिन गड़बड़ वहां, यहां मेरा पन आ गया, वहां पर पराया पन आ गया। तो दूसरा है देह का अभिमान आ जाता है। और उसमें आगे अगर देखें तो जो पाप कर्मों की विकर्मों की जो तीसरी जड़ है वो है अपना। हम अपने द्वारा मन वचन कर्म से दूसरों को दुख देते हैं, स्थूल में हो या सूक्ष्म हो। तो कर्मों के द्वारा दुख देना ये सबसे बड़ा विकर्म है। अगर मन के द्वारा हम किसी के लिए निगेटिव सोचते भी हैं तो भी उसका पाप कर्म बनता है। वाचा के द्वारा जो बोल देते हैं जिससे दूसरी आत्मा को ठेस पहुंचती है, कष्ट होती है, प्रैक्टिकल में और कुछ नहीं किया, सिर्फ बोल बोल दिए, तो भी उनको दर्द की अनुभूति हुई और पाप के खाते में वो जमा हो गया। इसीलिए रामायण भी क्या है, मुंह के द्वारा बोले हुए दो शब्दों का ही रिजल्ट है। रामायण भी महाभारत भी वही है। तो हमारे शब्द भी कितने बड़े पाप कर्म में बदल जाते हैं, छोटे छोटे बोल। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क से किसको दुख देना ये भी पाप कर्म है। इससे भी बड़ा पाप कर्म है टाइम वेस्ट करना। अगला है टाइम वेस्ट करना, समय को व्यर्थ गंवाना। क्योंकि हमारा जो संगम युग का जो समय है इतना महत्वपूर्ण है कि एक एक सेकेंड, एक एक मिनट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए कहते हैं ना कि छोटे छोटे एक एक बूंद से तालाब भरता है, कोई एक ही बार नहीं भर जाता है, बूंद बूंद से तालाब भरता है। इसलिए अगर हम पुण्य आत्मा बनना चाहते हैं, विकर्मों से बच करके सुकर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का सदुपयोग करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। इसलिए समय की वैल्यू बहुत ही कीमती है, समय अनमोल है। कोई अगर महान बन जाता है तो समय के महत्व को देख करके, समय के अनुसार जो अच्छे कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं वो महान बन जाते हैं। कर्मों के आधार पर भी उनको देवता या मनुष्य या असुर के आधार पे उनको अलग अलग डिफाइन किया जाता है या उनका वर्गीकरण किया जाता है या जाना जाता है। तो ये उनके जो मुख्य जो कुछ जड़ें हैं, इसमें और भी बहुत सारी जड़ें हो सकती हैं, वो कौन कौन से? स्वार्थ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कहीं पर भी स्वार्थ की उत्पत्ति होते ही विकर्म चालू हो जाता है, क्योंकि स्वार्थ है ही बीज, उसका बीज है, विकर्मों का बीज है, क्योंकि चाहिए, स्वार्थ माना मुझे चाहिए, दूसरे का कुछ भी हो कैसे भी करके उसको पाने की कोशिश करते हैं, दूसरों को दुख दे करके, कष्ट पहुंचा करके, नीचे गिरा करके, धक्का दे करके उसको पाने की कोशिश करते हैं, है ना, रिश्वत ले करके भी, है ना। तो ये सारे बहुत सारे पापों की जो जड़ हैं, इनको खत्म किए बिना हम धर्म राजपुरी की सजाओं से बच नहीं सकते हैं। और इसमें से अगला जो है वो है पांच विकारों की वश में जो हम कर्म करते हैं, वो बड़े विकर्म होते हैं। उस पर भी एक छोटी सी स्टोरी है, वो आपके सामने सुनाते हैं। एक संत और एक सेठ दोनों कहीं यात्रा पे जाते हैं, ट्रेन में सफर करते रहते हैं। जो सेठ जी थे वो भी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, तो उनमें जो धर्म की जो धारणाएं थी बहुत अच्छी थी, दूसरों को सहयोग देना, दूसरों भक्ति भावना बहुत अच्छी थी, पूजा पाठ आदि करना बहुत ही उनमें इस चीज की, सत्संगों में जाना, सत्संग कराना अपने यहाँ, और संत महात्माओं का बड़ा रिस्पेक्ट और रिगार्ड रखना, ये उनका बहुत ही अच्छा कार्य था। परंतु जब यात्रा कर रहे थे तो ट्रेन में ऐसे यात्रा करते समय जब कुछ समय बीत जाता है और एक स्टॉपेज आती है, अब स्टॉपेज आता है तो उसमें एक कोई बड़ा ही सूट बूट वाला टाई पैंट पहन के एक अटैची लेके चढ़ता है अंदर, और उनके पास में आकर के वो अटैची रखता है और कहता है इसको आप संभालते रहना जरा, मैं दूसरा और अपना सामान लेकर के आता हूं। जब वो अटैची छोड़ के जाता है बड़ा सूटकेस दूसरा और लेने जाता है, लेकिन वो लेकर के नहीं आ पाता है तब तक ट्रेन चल पड़ती है। अब वो छूट जाता है, अटैची उनके पास है। अब एक संत जी बैठे हैं सामने में है, अब वो सेठ जी हैं, वो भी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, दूसरे का लेने का कुछ है नहीं, उनके मन में कोई लोभ लालच है नहीं, अपनी कमाई ही खूब है। तो आगे की स्टेशन पे वो ट्रेन जब रुकती है तो उतरते हैं उस अटैची को लेकर के, और स्टेशन में जो स्टेशन मास्टर होते हैं, जो गार्ड होते हैं, उनको देते हैं, भाई अगले फलाने स्टेशन पे ये अटैची एक सूट बूट वाले जो बाबू आए थे वो रखे थे, पर उनके फिर और सामान लेकर के आधे तक ट्रेन चल पड़ी, तो ये उनका है, जरा पता करके इनको वापस दे देना। पर गार्ड था, बोला ठीक है पहले चेकिंग कर लेते हैं। जब अटैची खोलते हैं तो उसमें एक बच्चे का लाश पड़ा हुआ था। अब जो मामला तो गंभीर हो गई, सेठ जी भी मुसीबत में फंस गए, ये क्या। अब गार्ड उनको पकड़ लेते हैं और उनको जेल में डाल देते हैं, क्योंकि उसको लेकर के वो आए हैं, गार्ड को तो पता नहीं कि ये क्या है ओरिजिनल उसकी कहानी, लेकिन वो दंड मिल रही है सेठ जी को। जब सेठ जी जेल में ऐसे सोचते 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 बहुत ही दुखी हो जाते हैं, और सोचते सोचते जब सो जाते हैं, नींद आ जाती है उनको गहरी, तब वो भगवान के पास पहुंचते हैं। भगवान उनको दिखाता है, दिखाते क्या है, उससे पहले जन्म में उसने कुछ ऐसा विकर्म किए थे, उनके घर में बहुत सारे फल फल फूल के बगीचे थे। कुछ बच्चे, क्योंकि बच्चे तो होते ही हैं, खाने पीने के जहां देखेंगे वो टूट पड़ेंगे, तो आते थे और चोरी करके भाग जाते थे और खा लेते थे। गलती से एक दिन पकड़ा गया एक बच्चा, एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, ऐसे करके तो एक दिन पकड़ा गया। अब उसको बहुत गुस्सा आया उस टाइम पे और उसने उसकी पिटाई कर दी, जोर से ऐसा मार दिए भाई, अचानक कहीं बस चोट लग जाती है, कहीं सिर पे लग गया, कहीं सीने पे लग गया और वो डेड कर गया। बस उसका ही सजा उनको यहां पर इस रूप में मिला, क्योंकि वहां पे क्रोध के वशीभूत तो अपने को कंट्रोल नहीं कर पाए। गलती से चलो किसी को एक बार भी अगर चोट लगा दी और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, भारी पाप हो गया। तो ऐसी जो धर्मराजपुरी की जो सजाएं भी होती हैं वो तो ऐसे नहीं मिलती हैं, है ना, वो बकायदे भगवान उनको दिखाते हैं, साक्षात्कार होता है उनके कर्मों का। इसका भक्ति में भी जो गरुड़ पुराण है उसमें बहुत ही सुंदर तरीके से उसको लोगों को समझाने की कोशिश की है स्थूल रूप में। उसका कुछ धर्मराजपुरी की कुछ विशेषताएं उसमें बताई हैं, उसमें दिखाया है कि जब व्यक्ति पाप कर्म करते हैं उनके लिए धर्मराजपुरी होती है। धर्मराजपुरी में भी चार गेट होते हैं। जब इस भूलोक से कोई भी शरीर छोड़ता है ऊपर जाता है, स्वर्ग लोक है, उसके बीच में धर्मराजपुरी है ना, वहां पर हिसाब किताब की जो ट्रिब्यूनल बैठती है वहां पर चुकतू होता है, सजा वहां दी जाती है, उसमें भी कहते हैं, है ना। तो उसमें एक बात दिखाया है कि जब आत्मा शरीर छोड़ने से पहले बहुत कष्ट होता है उसको, और जो कष्ट होता है तो उसके कर्मों की जो रिकॉर्डिंग होती है वो एक छाया चित्र के शरीर के साथ होती है, और छाया चित्र का जो शरीर होता है उसके साथ निकलते हैं उसको उन्होंने भूत आत्मा कहा है, प्रेत आत्मा। वो 13 दिन तक प्रेत आत्मा होती है कहते हैं। इसके बाद वो रिकॉर्डिंग सूक्ष्म रूप में चली जाती है आत्मा के साथ में, उसको बायो आत्मा उन्होंने कहा। बायो आत्मा अर्थात बायो डाटा लेकर के जाती है, राइट, कि जो भी देखा है जीवन में, सुना है, किया है ना, उसकी सारी जो रिकॉर्डिंग है पूरे जन्मों की उसको लेकर की जाती है आत्मा, उसको बायो आत्मा उन्होंने कहा है, है ना। लेकिन जिसको जब वहां पहुंचती है आत्मा उस बायो डाटा को लेकर के बायो आत्मा, तो उसको दक्षिण ध्रुव से घुसना पड़ता है, क्योंकि उसके पास विकर्म बहुत ज्यादा हैं। तो दक्षिण ध्रुव से उनके दक्षिणी गेट से उनका इंटर होता है। बीच में जो धर्मराज होते हैं वो चमकीले आसन पे दिखाया है उसमें, बहुत ही चमकीले आसन पे और लाइट के छत्र वाले सिंहासन के नीचे विराजमान होते हैं, वो बाजू में चित्रगुप्त होते हैं उनकी सारी कर्म कहानी बताने के लिए। लेकिन चित्रगुप्त उसमें फिर यह भी बताया कि चित्रगुप्त कोई और नहीं है, वो जो बायोचिप है चित्रगुप्त, गुप्त रूप से जो भी कार्मिक अकाउंट्स है, जो भी देखा सुना है किया है, जो भी रिकॉर्ड किया है, सारा चित्र सूक्ष्म रूप में उसमें रिकॉर्ड है। परंतु स्थूल रूप में भी उन्होंने कह दिया कि साइड में चित्रगुप्त होता है, लेकिन वैसा नहीं है, उसमें रिकॉर्डिंग होती है, वो पिक्चर सारी है ना, वॉइस रिकॉर्डर भी होता है, वीडियो रिकॉर्डर भी होता है, लेकिन उसको पढ़ने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो सजा देने के लिए वहां बैठा है, धर्मराज। यमराज तो सिर्फ यहां से लेकर के जाएगा उसको, यमदूत लेकर के जाते हैं, है ना, लेकिन वो एक ही व्यक्ति पढ़ सकता है, जिसको बाबा ने यहां पे कहा है ना, जब तुमको कर्मों का दंड मिलता है तो ऐसे नहीं मिलेगा, तुमको बकायदा प्रूफ दिखाया जाएगा। तो जैसे कि वो रिकॉर्डिंग आत्मा के साथ जाती है और वो जैसे ही देखते हैं फिर उनको सजा मिलती है, सजा भी क्या भयंकर भयंकर दिखाया है उसमें, कभी कढ़ाई में तलते हुए, है ना, कभी कांटों की सैया में सुला देते हैं, कभी गरम गरम लोहे की बड़ी बड़ी राडे आंखों में डालते हैं, कभी लटका के मारते हैं, कितना खतरनाक सजाएं दिखाई है ना, क्या गजब गजब का है। कभी देखते हैं नरक के जो आग धधक रही है एकदम ज्वाला, उसमें ले जाके डाल देते हैं है? कभी सांप और बिच्छू टिंडन जहां है वहां ले जाके डाल देते हैं, वो डसते हैं, कितनी भयंकर कष्ट है ना, इतनी भयंकर दंड दिखाते हैं। इसके बाद कहते हैं कि आत्मा प्योर हो जाती है दंड देने के बाद, फिर जा करके उनको अगला जन्म मिलता है। तो इस तरह की जो कष्टकारी जो जीवन दिखाया है उसमें बहुत ही भयंकर है। तो हमें भी इन सभी विकर्मों से बचना है। बाबा ने इसकी बहुत कुछ युक्तियां भी बताई हैं। अब देखते हैं ये सारी चीजें तो थी, उसका बीज क्या है, फिर उसकी सजाएं कैसे मिलती हैं, है ना। अब देखते हैं क्या हम यहां बस बाबा ने हमें क्या विधि बताई है उसकी युक्तियां, जो सजाएं हमारी कम हो जाएं, विकर्म फिनिश हो जाएं, माफ हो जाएं। उसके लिए बाबा ने सबसे पहली बात कहा था, जब कोई भी बाबा का बच्चा बनता था तो बाबा कहते थे, बच्चे अपना जीवन कहानी लिख करके दो। क्यों क्यों कहते थे भाई, क्यों कहते थे, क्योंकि अगर आप इस जन्म में जो भी विकर्म किए हैं वो सारा जितना आपको याद है वो लिख करके देंगे तो आधा माफ हो जाएगा। इस लिख के देने के विषय में एक अपने ट्रॉमा सेंटर के जो वरिष्ठ भाई हैं विनोद भाई, उन्होंने अपने अनुभव में ये बात सुनाया था कि बाबा ने जब मेरे को कहा कि बच्चे अपनी सारी जो जीवन कहानी वो लिख के दो, वो साकार बाबा के संकेत थे, तो उन्होंने सारी जीवन कहानी लिख करके पूरा कॉपी भर करके लेकर के आए थे। तो बाबा ने कहा पढ़ के सुनाओ, बाबा के सामने बैठ गए है ना, लिख करके तो लेके आए पर बाबा पढ़ेगा नहीं, पढ़ के सुनाओ खुद ही। अब वो पढ़ते जा रहे हैं एक एक करके, और बाबा ऐसे हाथ करते जा रहे थे जैसे माफ होता जा रहा है। तो उन्होंने ये बात अनुभव में सुनाई थी, वो बात अंदर में लगा था कि नहीं होता है। फिर प्रैक्टिकल में हमने भी करके देखा, बाबा ने किया नहीं लेकिन वो अनुभव में आया, लाइट एकदम फील होने लगी। जैसे इस जन्म में जितनी भी जितने लोगों को कष्ट पहुंचाया है, जितने को दुख दिया है ना, वो सारा लिख करके दिए है ना। तो वो जैसे फील हुआ लिखने के बाद, जैसे कि बहुत हल्कापन आ गया। दूसरी विधि बाबा ने बताया, चलो लिख नहीं सकते हो, बाबा के सामने सुना दो, सारी बातें सुना दो। पहले चलो साकार बाबा सामने थे, अभी अभी बाबा के कमरे में जाकर के सुना दो तो भी बाबा के पास पहुंच जाता है, बाबा सुन लेता है और आपकी आधी सजा माफ हो जाती है। क्योंकि भूल होते ही हैं, अज्ञानतावश अनजाने में होते हैं, है ना। और बाबा ने कहा है जो तीसरी विधि बाबा ने बताई है, पापों से मुक्त होने के लिए, मुक्त तो नहीं हो सकते लेकिन हल्का जरूर होता है, वो है माफ करना और माफी मांग लेना। आपकी वजह से किसी को भी अभी वर्तमान समय में कई आत्माएं हैं जिनको हमसे कष्ट होती है अनजाने में, पता नहीं वो व्यक्ति किस हमारी एक्शन को देख करके वो नोट कर लिया है, उससे वो दुखी है, हमें नहीं पता, हमने उसको कुछ बोला नहीं है, कुछ किया नहीं है उसके लिए, जो महीन पाप होते हैं उसे देख लिया, अरे ये तो ऐसा ही है, ये ऐसी करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कभी भी टोकते रहते हैं, कई ऐसे होते हैं, चलता रहते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटे छोटे पाप भी अंततः बड़े हो जाते हैं। इसलिए सबको माफी मांग लेना, सभी आत्माओं से, आत्माओं से भी, प्रकृति से भी, सबसे, जो इविल आत्मा है जो शरीर में नहीं है, शरीर से परे हैं, भटक रही हैं, उनसे भी माफी मांगने हैं, क्योंकि उनसे भी हमारा हिसाब किताब है। क्योंकि नहीं तो अंततः क्या होगा, बाबा ने कहा ना, ये हिसाब किताब जब तक आप उनको देंगे नहीं, उनको माफ नहीं करेंगे, उनको उनसे माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि हम कौन हैं, सबके आधार और उद्धार मूर्त हैं। तो आधार और उद्धार मूर्त जो आत्माएं हैं, वही दूसरे के लिए उनके मन में या कुछ गलत भाव बैठ गया, या गलत डिसीजन की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ ऐसा हो गया, तो फिर बहुत बड़ा विकर्म बनेगा उसका। तो इसलिए माफ कर देना है, नहीं तो अंततः ये एक एक के ऊपर दस दस आत्माएं अटैक करेंगी। तो क्या होगा, अगर जिनको आपने वाइब्रेशन दिया है, माफ किया है, उनको गुड वाइब्रेशन देते रहे हैं, वो आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। क्यों? उनसे आपको प्राप्ति हुई है, मिला है, फिर वो आपकी सुरक्षा करेंगे, सिक्योरिटी बन जाएंगे, सुरक्षा कवच। प्रकृति भी आपके सहयोगी बन जाएगी, मदद करेगी आपको, कोई नुकसान नहीं होगा। और अगला जो है वो है, जो था वो साकास देना, शक्तियां देना। अगर किसी से कुछ भूल हो गया, उसको पावर दे करके उसका हिसाब किताब पूरा कर लेना, क्योंकि सूक्ष्म में सारे हिसाब किताब पूरे होते हैं। सहयोग का नोट जिसको कहते हैं, सहयोग का नोट रखो अपने पास, सबको दो, तो आपके जो विकर्म है वो और हल्के होते जाएंगे। और अगली जो है वो है पुण्य कर्म, यज्ञ, सेवा, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, तन मन धन, समय श्वास संकल्प, मन वाणी कर्म, दृष्टि वृत्ति स्थिति स्मृति, सबसे पुण्य करो। पुण्य का खाता जितना बढ़ता जाएगा, उतना भी कर्म स्वतः ही खत्म होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, और पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। इस सारी जो धर्मराजपुरी की है, उसको कहा कविता के रूप में, थोड़ा शॉर्ट रूप में किया हूं, अब उसको थोड़ा सबके सामने रख देता हूं कविता के रूप में। तो धर्मराजपुरी की जो एक स्वतंत्र रूप से कविता के रूप में जो है वो है, क्योंकि जब आत्मा यहां से शरीर छोड़ती है तो ऊपर जाएगी, तो क्या होगा, न बजेगी बांस न बजेगी बांसुरी, हुआ खेल पूरा चलो धर्मराजपुरी, न बजेगी बांस न बजेगी बांसुरी, हुआ खेल पूरा चलो धर्मराजपुरी, न लेकर किताब न करके हिसाब, न लेकर किताब न करके हिसाब, बने हो नवाब या की हो मजदूरी, बने हो नवाब या की हो मजदूरी, कुछ कंकड़ कुछ मोती से भरी है तिजोरी, हुआ खेल पूरा चलो धर्मराजपुरी, हुआ खेल पूरा चलो धर्मराजपुरी, गीत भी गाए संगीत भी सुनाए, क्योंकि जीवन में सब कुछ किए हैं, गीत भी गाए संगीत भी सुनाए, राज भी की अतिंद्रिय रस भी पाए, संगीत के स्वर का सुर है माधुरी, हुआ खेल पूरा चलो धर्मराजपुरी, चलो धर्मराजपुरी, बोल भी झूठ कर्म भी खोटे, बोल भी झूठ कर्म भी खोट, सब थे खुश था सबका सपोर्ट, है ना, बोल भी झूठ कर्म भी खोट, थे सब खुश था सबका सपोर्ट, फिर भी ऊपर में लिखा रहा था रिपोर्ट, फिर भी ऊपर में लिखा रहा था रिपोर्ट, न की बेईमानी न की दादागिरी, हुआ खेल पूरा चलो धर्मराजपुरी, हुआ खेल पूरा चलो धर्मराजपुरी। इस रंगमंच पर नाटक अब हुई पूरी, यह है कंसपुरी जाना है कृष्णपुरी, यह है कंसपुरी जाना है कृष्णपुरी, आना भी था जरूरी और जाना भी है जरूरी, कोई बचेगा नहीं। आना भी था जरूरी और जाना भी है जरूरी, परंतु बीच में है गहरी खाई जो है धर्मराजपुरी। अब हुआ खेल पूरा, चलो धर्मराजपुरी। सिर पर मौत खड़ा है, सिर पर है ना बाबा कहते ना, सिर पर मौत खड़ा है, बैंक में बैलेंस पड़ा है ना, सिर पर मौत खड़ा है, बैंक में बैलेंस पड़ा है, पोते हैं छोटे बिजनेस भी बड़ा है, पोते हैं छोटे बिजनेस भी बड़ा है। सांसें हुई पूरी, करना है सवारी। अब सांसें भी हुई पूरी, करना है सवारी। हुआ खेल पूरा, चलो धर्मराजपुरी। सुना है धर्मराज का दंड है बड़ा प्रचंड, सुना है धर्मराज का दंड है बड़ा प्रचंड। गुनाह है अथाह, फिर भी है घमंड। जानते हैं गुनाह है अथाह, फिर भी है घमंड। मुजरिम भी अथाह, सभी है मुजरिम। मुजरिम भी अथाह, वक्त है कुछ सेकंड, वक्त है कुछ सेकंड। अधर्मियों के संसार में धर्म की मगरूरी। हुआ खेल पूरा, अब चलो धर्मराजपुरी, चलो धर्मराजपुरी। ओम शांति।
मेरा खुदा।